दोनों खेमे गुमराह। इस प्रकार देखा जाए तो नरमपंथी और गरमपंथी दोनों के सोच और अनुमान गलत थे, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण से भी और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से भी। नरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, न कि उनकी ताकत के डर से। गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम करते हैं। साथ ही अभी उनकी ताकत इतनी नहीं बढ़ी है कि वे फिरंगी हुकूमत से लोहा ले सकें। उनकी समझ में यह बात भी नहीं आई कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जहां एक सशक्त साम्राज्यवादी सत्ता शासन कर रही हो, कोई आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब उसका दायरा देशव्यापी हो और उसका नेतृत्व कोई सशक्त और लोकप्रिय संगठन कर रहा हो। ऐसी भी बात नहीं थी कि उस समय सचेत राजनीतिज्ञ न रहे हों। दोनों खेमों के दो लोकप्रिय जन नेता तिलक और गोखले काफ़ी परिपक्व राजनीतिज्ञ थे और राष्ट्रवादियों में फूट के खतरे को अच्छी तरह समझते थे। तिलक नहीं चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे में कोई दरार पड़े। उन्हें मालूम था कि उस समय विभिन्न राजनीतिक धाराओं की एकता के बिना न तो कोई आंदोलन छेड़ा जा सकता था और न ही अपनी राजनीतिक मांगों को मनवाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव डाला जा सकता था। तिलक की रणनीति थी कि पहले अपनी राजनीतिक विचारधारा के प्रति व्यापक जनसमर्थन जुटाया जाए, इसके बाद नरमपंथियों को समझौते के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन महाराष्ट्र के उनके गरमपंथी समर्थकों और बंगाल के कुछ अति गरमपंथी आंदोलनकारियों ने उनकी रणनीति को सफल न होने दिया। तिलक समझ गए कि उनकी चाल कामयाब नहीं हो सकती। यही नहीं, अपने गरमपंथी समर्थकों के कारण तिलक को अरविंद घोष जैसे अत्यंत गरमपंथी नेता का साथ भी पकड़ना पड़ा। गोखले ने भी राष्ट्रवादी खेमे में विभाजन के खतरे को महसूस कर लिया था और इसे टालने के लिए भरसक प्रयास भी किए। 1907 में ही उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा था कि विभाजन का मतलब विनाश होगा और तब नौकरशाही के लिए दोनों वर्गों को दबाने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। लेकिन गोखले का व्यक्तित्व तो इतना प्रभावशाली नहीं था कि वह फिरोज शाह मेहता जैसे ताकतवर तानाशाह के सामने टिक पाता। उन्हें भी अपने कुछ उग्र नरमपंथी समर्थकों के सामने घुटने टेकने पड़े। 26 दिसंबर को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। गरमपंथी इस अफवाह से बेहद उत्तेजित थे कि नरमपंथी कलकत्ता अधिवेशन के चारों प्रस्तावों को निष्प्रभावी बनाना चाहते हैं। पिछले 3 दिनों में सूरत में हुई जनसभाओं में नरमपंथियों की खिल्ली उड़ाई गई और उनके खिलाफ जहर उगला गया, जिससे नरमपंथी काफ़ी दुखी थे। अतः पूरा अधिवेशन उत्तेजना और क्रोध के वातावरण में हुआ। गरमपंथी चारों प्रस्तावों को स्वीकार करने की गारंटी चाहते थे। इसके लिए नरमपंथियों पर दबाव डालने के उद्देश्य से उन्होंने विधिवत चुने गए अध्यक्ष रास बिहारी घोष का विरोध तक करने का निर्णय कर लिया। दोनों ही पक्ष अधिवेशन में तकरार के लिए तैयार होकर आए थे। थोड़ी ही देर में 1600 प्रतिनिधि एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, मारपीट पर उतारू हो गए और कुर्सियां फेंकने लगे। इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंच पर एक जूता फेंका जो फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगा। इसके बाद पुलिस आई और उसने सभागार खाली कराया। कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हो गया। इसमें जीत केवल अंग्रेजी हुकूमत की हुई। मिंटो ने तत्काल मार्ले को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। सूरत अधिवेशन की घटनाओं से तिलक हतप्रभ थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। अरविंद घोष ने बाद में लिखा भी कि तिलक जानते थे कि कांग्रेस में विभाजन बहुत बड़ा अनर्थ होगा, क्योंकि उनकी नज़र में कांग्रेस उस समय एक राष्ट्रीय जरूरत, एक राष्ट्रीय सच्चाई थी और उससे बहुत सारी उम्मीदें थीं। तिलक ने बाद में इस दरार को पाटने की कोशिशें भी की थी। अपने विरोधियों को चिट्ठी लिखकर खेद प्रकट किया। रास बिहारी घोष को कांग्रेस अध्यक्ष पद के रूप में स्वीकार किया और कांग्रेस की एकता के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन फिरोज शाह मेहता और उनके समर्थकों का अड़ियल रुख बरकरार रहा, उसमें जरा भी नरमी नहीं आई। वे समझते थे कि जीत उन्हीं की होगी, जबकि सच्चाई यह थी कि कांग्रेस विभाजन से दोनों में से किसी भी गुट को फायदा नहीं पहुँचा। उल्टे यह विभाजन दोनों गुटों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। सरकार ने इस घटना के फौरन बाद आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दमनात्मक कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। गरमपंथियों के अखबारों की जुबान बंद कर दी गई। इनके मुख्य नेता तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में भेज दिया गया। इस खेमे के प्रमुख सिद्धांतविद अरविंद घोष एक क्रांतिकारी षड्यंत्र में अभियुक्त थे और जब बेकसूर करार कर छोड़े गए तो उन्होंने पांडिचेरी की राह पकड़ ली, राजनीति को त्याग और धर्म को अपना लिया। विपिन चंद्र पाल ने भी अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया और लाला लाजपत राय जो सूरत अधिवेशन की घटनाओं के असहायक मूक दर्शक थे 1908 में ब्रिटेन चले गए, वहां से 1909 में लौट कर आए तो फिर अमेरिका चले गए। ऐसी हालत में गर्मपंथी कोई सशक्त वैकल्पिक दल नहीं बना सके जो आंदोलन को आगे ले जाता। सरकार इन्हें दबाने में सफल रही, हालांकि कुछ समय के लिए ही। नरमपंथियों को लगा कि अब उनके लिए पूरा मैदान साफ है। उन्होंने बनारस और कलकत्ता अधिवेशन में संघर्ष के लिए स्वीकृत तमाम क्रांतिकारी व जुझारू तरीकों को तिलांजलि दे दी। गर्मपंथियों के एकता के सभी प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब वे एक नई कांग्रेस का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। बकौल फिरोज शाह मेहता, पुनर्जीवित एक नए रूप में सजी सवरी कांग्रेस। लेकिन आगे की बात कौन करे, ये लोग कांग्रेस की उन उपलब्धियों को भी संरक्षित नहीं रख सके जो उन्हें विरासत में मिली थी। कांग्रेस की शक्ति समाप्त प्राय हो चुकी थी और इसे पुनः इकट्ठा करने के तमाम प्रयास विफल हो गए। बिना किसी उत्साह व ताकत के कुछ दिनों तक ये कांग्रेस की गाड़ी खींचते रहे, लेकिन राजनीति में रुचि रखने वाले भारतीय जनों का, विशेषकर युवकों का समर्थन खोने के कारण कुछ ही दिनों के भीतर यह पार्टी एक अंतरंग मंडली बनकर रह गई। अधिकतर नरमपंथी नेता अपने अपने निजी क्वार्टरों में लौट गए। केवल गोखले सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कुछ सहयोगी कार्यकर्ताओं की मदद से मैदान में डटे रहे। राजनीतिक रूप से सचेत बहुसंख्यक भारतीय लोग माने तिलक व गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को समर्थन देने लगे। 1908 के बाद समूचा राष्ट्रीय आंदोलन पतन की ओर उन्मुख हो गया। 1909 में जब अरविंद घोष जेल से बाहर आए तो उन्होंने बदले हुए हालात पर टिप्पणी की। जब मैं जेल जा रहा था तो समूचा देश एक नए राष्ट्र की परिकल्पना सजोए जीवंत दिख रहा था। लाखों सुप्त दिलों में नई राजनीतिक चेतना हिलोरे लेने लगी थी। लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो पूरा देश स्तब्ध मौन था। लेकिन आंदोलन की लहर थमने का मतलब यह नहीं कि जनता के दिलों से राष्ट्रीय संवेदनाएं भी खत्म हो गई थीं। ये संवेदनाएं उनके दिलों में बरकरार थीं। लोग आंदोलन के अगले चरण का इंतजार कर रहे थे। 1914 में जब तिलक जेल से छूटे तो उन्होंने सूरत अधिवेशन में पटरी से उतरी आंदोलन की गाड़ी को पुनः पटरी पर डाला।